नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और यातायात दबाव कम करने के लिए परिवहन क्षेत्र में बहुस्तरीय सुधार किए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क में बदलाव किए गए। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1704 ईस्वी को सरहिंद, जो आज फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है, वहां जबरदस्ती धर्मांतरण से इनकार करने पर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। साहिबजादों की शहादत देश के लिए आस्था, साहस और नैतिक शक्ति का एक स्थायी प्रतीक है। उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है और देश की सामूहिक ऐतिहासिक स्मृति में एक केंद्रीय स्थान रखता है। इस दिन उनकी बहादुरी का सम्मान करने और याद करने के लिए गुरुद्वारों में प्रार्थना और कीर्तन किए जाते हैं। साहिबजादों के सम्मान में राष्ट्रपति द्वारा देश भर से 18 वर्ष से कम आयु के चुनिंदा बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। एक रिपोर्ट।
9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को बेहतरीन उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार पाने वालों को प्रोत्साहित करेगा और देश भर के बच्चों को भी प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों ने बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार और विज्ञान और तकनीकी ज्ञान सहित कई क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए हैं।
आज 20 बच्चे को पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ।
आकाशवाणी समाचार से अपनी बहादुरी की घटना को याद करते हुए आगरा के 9 वर्षीय अजय राज ने बताया कि जब वे नदी में पानी लेने गए थे तो उन्होंने अपने पिता को मगरमच्छ के हमले से बचाया था।
मेरे पापा छिन्ने चराने गए, चिमल के किनारे प्यास लगी तो पानी भर रहे थे, इसलिए पीछे से मगर ने पैर पकड़ लिया। तभी मेरे पापा इल्लाए तो मैं लाठी लेके कूद गया। मैंने 10-15 लाठी मारी तो वो मेरे पर टूटा तो मैं लिखकर गया, मेरे पापा भी लिखकर।
वहीं एक अन्य पुरस्कार विजेता महाराष्ट्र के अर्णव अनुप्रिया महर्षि को उनके 2 नवाचार के लिए यह सम्मान मिला है, जो लकवा ग्रस्त मरीजों की सेहत में सुधार में मदद करते हैं। उन्होंने आकाशवाणी समाचार को अपने दाहिने हाथ में लकवा होने की कहानी भी साझा की।
ये इनोवेशंस मेरे खुद के रिकवरी के प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। मैं खुद पैरालाइज था मेरे डोमिनेंट राइट साइड पे और ये जो इनोवेशंस ये पैरालिसिस पेशेंट्स और सेरेब्रल पॉलिसी पेशेंट्स के लिए बना है, उनके रिकवरी को फास्ट करने के लिए और बेटर करने के लिए। सपने जैसा लगता है पर अभी ये सपना भी सच हो गया है। और पर फिर भी ये अवार्ड के पीछे सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं।
वीर बाल दिवस भारत के युवा नायकों की हिम्मत, बलिदान और बेहतरीन मूल्यों को याद करने के साथ साथ आज के युवाओं में अनुकरणीय साहस और बलिदान की भावना पैदा करता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर बाल दिवस पर वीर साहिबजादों की शहादत को याद किया। उपराष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि साहिबजादों की अटूट आस्था और वीरता राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी। वहीं गृहमंत्री ने कहा कि साहिबजादों की वीरता की गाथा मातृभूमि के लिए बलिदान, समर्पण और शहादत का पर्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखते हुए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर राजधानी में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में कहा कि वीर बाल दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों में साहस, स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम और नैतिक दृढ़ता के संस्कार रोपित करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अत्यंत छोटी उम्र में जिस अदम्य साहस, दृढ़ आस्था और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया उसकी विश्व इतिहास में कायम है। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी स्थित सीएम श्री स्कूल में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादे भारतीय इतिहास में अदम्य साहस, त्याग और धर्मनिष्ठा के अमर प्रतीक हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि ये गाथा केवल इतिहास की एक घटना नहीं है बल्कि बलिदान, त्याग, तपस्या और राष्ट्रप्रेम की पराकाष्ठा भी है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने जीवन का मार्गदर्शक मंत्र बनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चे ही विकसित देश की परिवर्तनकर्ता हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा ने कहा कि सही अवसरों और उचित मार्गदर्शन से देश के बच्चे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती।
वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती। जब हम सही को चुनते हैं और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं वही वीरता है। यही निर्णय मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं और 2047 के विकसित भारत का पथ प्रशस्त करते हैं। चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो या माई भारत पोर्टल, आपका बच्चों से सीधा संवाद अमृत पीढ़ी को यह विश्वास देता है कि पूरा देश उनके सपनों और संकल्पों के साथ खड़ा है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से आरंभ होगा और कार्यवाही को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। श्री गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र की कार्यवाही की शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान सदन में महत्वपूर्ण विधायी और प्रक्रियात्मक कार्य सम्पन्न किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये 8वीं विधानसभा का चौथा सत्र 5 से 8 जनवरी 2026 तक विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन RIFC द्वारा दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में 1500 से अधिक डुअल डेस्क के साथ साथ विभिन्न आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। RIFC ने छात्रों के बैठने के लिए 1580 डुअल डेस्क, शिक्षकों के लिए 763 कुर्सी तथा मेज, कक्षाओं के लिए 1036 पंखे और 1887 LED लाइट प्रदान किए हैं। इस अवसर पर नगर निगम महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल का छात्र घर और समाज दोनों जगह संघर्ष करता है क्योंकि उसमें जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत होती है। नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 29 दिसंबर को डॉ. कपिला वात्स्यायन स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अभिव्यक्ति एक दूरदर्शी के संग्रह से करघे की अभिव्यक्तियां शीर्षक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा जो कला केंद्र के दर्शनाम एक और दो गैलरी में प्रदर्शित किए जाएंगे और ये प्रदर्शनी 7 जनवरी 2026 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में पूरे भारत की 50 से अधिक विशिष्ट शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग शुल्कों में बदलाव किए गए हैं। रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि निजी वाहनों के लिए पहले 8 मिनट निःशुल्क रहेंगे और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 30 रुपए का शुल्क लगेगा। श्री उपाध्याय ने बताया कि 15 मिनट से अधिक समय तक रुकने पर निजी और वाणिज्यिक वाहनों को 200 रुपए की जगह सिर्फ 150 रुपए शुल्क देने होंगे। साथ ही दोनों वाहनों में आधा से एक घंटा तक रुकने पर 500 रुपए शुल्क को घटाकर 200 रुपए का दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों को एक घंटा से अधिक समय तक ड्रॉप ऑफ लेने में पार्क करने की अनुमति नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा। इसके अलावा 300 रुपए का टोइंग शुल्क भी लगाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने तेजी से बढ़ती रेल यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की परिचालन क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल और पुरी शामिल है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से परिवहन क्षेत्र में बहुस्तरीय सुधार किए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की परिवहन नीति का मूल उद्देश्य ये है कि राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम रहे लेकिन यात्रियों की आवाजाही पर किसी भी प्रकार का दबाव या असुविधा न हो। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए निजी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनियों के साथ लगातार संवाद कर रही है जिससे इन कंपनियों द्वारा साझा सवारी, महिला ड्राइवरों की भागीदारी और पर्यावरण अनुकूल सेवाओं को प्राथमिकता मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में शेयर टैक्सी सेवाएं उपलब्ध थी लेकिन कुछ कारणों के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। हालांकि अब दिल्ली सरकार इन्हें दोबारा शुरू कराकर यात्रियों को किफायती तथा सुविधाजनक साझा परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में प्रवर्तन एजेंसियों ने सघन जांच करते हुए पिछले 24 घंटे में 4,927 वाहनों की जांच की और 3,970 चालान जारी किए। वहीं इसी दौरान 28 बसों को जब्त भी किया गया। राजधानी में आज सुबह के समय सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई, वहीं दिन में धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 241 दर्ज किया गया जो वायु की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। राजधानी के द्वारका जिला पुलिस ने लोगों के खोए हुए और चोरी किए गए 160 से अधिक मोबाइल फोन को वापस किया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई जिले की मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई जिसमें बरामद किए गए मोबाइल फोन को उनके असली मालिक को चिन्हित कर वापस किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और यातायात दबाव कम करने के लिए परिवहन क्षेत्र में बहुस्तरीय सुधार किए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क में बदलाव किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।